Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radhika, Mike, please. Mike. Jaya Gauranika. Jai Gaur Premanande Grantharaj Srimad Bhagavat Mahapurana Ki Shila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Gurave Gaur Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Nashta Praesho Bhadresho Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Krishnaya Vasudevaya देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। प्रिय भाग्यशाली भक्तों, श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 9वें अध्याय में भगवान के मोहिनी मूर्ति के रूप के लीलाओं का श्रवण वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा है खीर सागर के मंथन का। इस मंथन की प्रेरणा भगवान स्वयं नारायण ने दी। देवताओं का हित करने के लिए कि समुद्र मंथन से अमृत मिले निकलेगा और उस अमृत को देवताओं को पिलाया जाएगा तो वो अमर हो जाएंगे। अमर का मतलब ऐसे नहीं है सारी सदा के लिए अमर हो जाएंगे, लेकिन बहुत दीर्घ काल तक वो अपना कार्य कर सकेंगे। अमृत जब निकला, कलश लेके धन्वंतरी आए तो असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से उस कलश को छीन लिया। अब अमृत का कलश किसके पास है? असुरों के पास। लेकिन असुरों के हृदय में भी तो परमात्मा बैठे हुए, आपस में झगड़ा हो गया। वो कहता पहले मैं पीऊंगा। और इस स्थिति में झगड़े में किसी को अमृत पीने का तो अवसर मिला नहीं। और भगवान ने वचन किया था देवताओं को अमृत पिलाने का, तो अब भगवान एक बहुत सुंदर नव युवती के रूप में प्रकट हो गए उन असुरों के सामने। ये असुरों का सौभाग्य है, अमृत नहीं मिला लेकिन भगवान का दर्शन तो हुआ, मोहिनी रूप मूर्ति उनके सामने प्रकट हो गई। और मोहिनी मूर्ति के हाव भाव और मन मोहिना जो मन एनचेंटिंग जो उसका आकर्षण था, उससे देवता विमोहित हो गए और सारी असुर विमोहित हो गए और कहा कि आप हमारा न्याय कीजिए, आप हमको अमृत बांट के पिलाइए। तो मोहिनी मूर्ति ने मुस्कुराते कहा काय के लिए विश्वास कर रहे हो मेरे ऊपर? अकेली हूं, स्त्री हूं, घूम रही हूं वन में, स्वचारणी हूं, विश्वास करना नहीं चाहिए। असुर कहते हैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करें, हम तो आपको सब कुछ दे चुके, जैसे आप कहेंगे वैसे हम करें। ये लो अमृत का कलश। और मोहिनी मूर्ति के हाथ में अब अमृत का कलश आ गया, पहले धन्वंतरी के हाथ में, फिर असुरों के हाथ में, अब फिर वापस भगवान मोहिनी मूर्ति के हाथ में कलश तो आ गया। वो कलश के अमृत को भूल गए, वो वास्तव में मोहिनी मूर्ति का जो सुंदरता का आकर्षण था उसमें ही इतने मुग्ध हो गए। तो उन्होंने कहा आप अमृत पीना चाहते हो तो स्नान तो करो, काले हो गए हो, ये विष सारा आपके ऊपर मंथन से वासुकी के मुंह से निकला, आप तो जले हुए लकड़ी की तरह काले हो गए, स्नान तो करो, अमृत ऐसे थोड़ी पीता है, जाओ स्नान करके आओ। सब स्नान कर बोला आप लाइन में बैठ जाओ। एक तरफ असुर बैठ गए, एक तरफ देवता बैठ गए। तो मैंने मूर्ति ने असुरों को कहा ये लालची देवता है, इनको थोड़ा सा नाम का अमृत पिला के फिर सब आपको पिला दूंगा। और देवताओं ने इस बात के ऊपर विश्वास कर दिया और मोहिनी मूर्ति जी भर के अमृत देवताओं को पिलाने लगी। तो असुरों में एक असुर राहु क्रूर ग्रह है, उसने मोहिनी मूर्ति के इस देवताओं के पक्षपात के छल को पहचान लिया और वो देवता का रूप धारण करके चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाके बैठा। चंद्रमा और सूर्य देवता है, उन दोनों के बीच में जाके बैठ गया। मोहिनी मूर्ति भी भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं कि ये राहु है, परंतु लीला कर रहे हैं, उसको अमृत पिला दिया देवता समझकर, अमृत उसके गले तक गया। तब तक चंद्रमा ने एक तरफ से, सूर्य ने दूसरी तरफ कहा ये असुर है, देवता नहीं है। काम क्या किया चंद्रमा और सूर्य ने, क्या कहते हैं इसको, किसी को इशारा करने को क्या कहते हैं, एक शब्द है चुगलखोरी करना, चुगलखोरी कहते हैं ना, हा? और चुगलखोरी का इन दोनों, ये दोनों राहु से पहले ही आंकड़ा इनका जो है वो 63 वाला है, एक दूसरे से बनती नहीं है। तो ये दोनों अब और चुगलखोरी जो की, तो राहु इन दोनों को जब ये पूर्ण होते हैं तब इनको ग्रहण लगाता है, तो ग्रहण का कारण है उन दोनों की चुगलखोरी करना। अब क्या किया मोहिनी मूर्ति ने, वो ये श्लोक है, तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। चक्रेण क्षौर धारेण जहार पीबत श्रा हरिस्तस्य कम्बन्धस्तो सुधया अपलावितो अपतत। चक्रेण क्षौर धारेण जहार पीबत स्रः हरिस्तस्य कबन्धस्तो शुद्धया अपलावितो अपातात। चक्रेण क्षौर धारेण जहार पीबत श्रः हरिस्तस्य कबन्धस्तो शुद्ध्या पलावितो पतात। चक्रेण धारेण हरिस्तस्य कमन्धस्तो पतात। चक्रेण क्षौर धारेण तो अपत। चक्रेण क्षौरधारेण नारसे कत सरस यतस्य कमन्धस्थो सुभद्रया पलावितो जहार पिबत श्रकिमंडस्थो दया पलावित पत चक्रेण स्वधारेण दंतस्य कमन्धस्थो चक्रेण क्षौरधारेण शुद्धया पालतत्व। तो पहला शब्द है चक्रेण क्षौरधारेण, चक्र भगवान का सुदर्शन चक्र। क्षौर धारण का मतलब है बहुत, जिसकी धार पैनी और घातिक है। और भगवान की उंगली से निकलता है, दिखता नहीं है, काट के सर को वापस उंगली में आ जाता है। कितनी तेज धार है, तीखी धार जिसको कहा जाए। तो ये जो भगवान का आयुध है, आयुध है भगवान का, ये शस्त्र है भगवान का, ये है भक्तों की रक्षा के लिए। अच्छा, इस चक्कर ने कहीं भक्तों की रक्षा की है? आपको उदाहरण याद है कोई? कौन सा? अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए दुर्वासा के पीछे ये चक्कर लग गया था। तो चक्कर का काम क्या है? भक्तों की रक्षा करना। महाज्वाला चक्कर की प्रार्थना अम्बरीश महाराज करते हैं, तो इसको महाज्वाला कहते हैं। बहुत अग्नि जैसा इसका तेज है, जो इतने बड़े शक्तिशाली दुर्वासा ऋषि को उस तेज को सहन नहीं हो सका, इतना भागने लगा। तो ये चक्र सुदर्शन भगवान का, तो भगवान का नाम इसकी वजह से एक है, चक्र पाणी। पाणी कहते हैं हाथ को, जिसके हाथ में चक्र होता है। वैसे श्री कृष्ण के हाथ में चक्र होता नहीं है, बांसुरी होती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो चक्र का आवाहन कर लगते करते हैं। ऐसा कोई उदाहरण याद है जब भगवान ने ऐसे चक्र का अचानक आवाहन किया हो? शिशुपाल वध के समय भगवान ने तत्काल चक्र का आवाहन किया। चेतना महाप्रभु ने चक्र का आवाहन किया जगाई और माधाई, जब नित्यानंद का अपराध किया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब एक शब्द आपके सामने आए तो आप थोड़ा सा उस शब्द के अर्थ को और भाव को अपने हृदय में बिठाने के लिए कुछ उदाहरण ऐसे ढूंढ लिया करो, तो आप समझो कि आप समझ के पढ़ रहे हैं कि चक्र कैसा पैना है, कैसा तेज है, कैसा ज्वलंत है, और कब भगवान इसका उपयोग करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं। गदा भगवान भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं, कोई उदाहरण? परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए भगवान गदा को इतना तेज घुमा रहे थे ब्रह्मास्त्र से रक्षा के लिए। और चक्कर से किसी की रक्षा की हो? अब बात आप कर रहे हैं तो एक और उदाहरण है, यहां पांच पांडवों की अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान अपने चक्र के द्वारा रक्षा की, तब प्रश्न उठता है, ब्रह्मास्त्र का तो कोई निवारण है ही नहीं, प्रतिउत्तर है ही नहीं। बोला फिर भी भगवान विष्णु के चक्र से ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा का है और चक्र विष्णु का है, इसलिए विष्णु के चक्र से पांचों पांडवों के ऊपर आने वाली आपदा ब्रह्मास्त्र अश्वस्थामा का निरस्त हो गया। तो ये चक्र के आपको कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। चक्रेण क्षोर धारेण, चक्र का विशेषण क्या है, बहुत उसकी धार पैनी है और वो चलता भी बहुत तीव्र गति से है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली रक्षा का जो भगवान का ये अस्त्र है चक्र। दूसरी लाइन में लिखा है जहार पीबत शिर, जहार का मतलब है काटना, मिटाना, हटाना। पीबत का मतलब जब पी रहा था, शिर का मतलब सर, इसका मतलब पी लिया था नहीं, अभी अमृत, वैसे सबके पास कटोरे वटोरे थे नहीं, उधर कोई बर्तन नहीं थे, ऐसे ही पी रहे होंगे और पहले ऐसे ही पीते, इसका नाम ही है कर पात्री, इसको कर पात्र कहते हैं, ये पात्र है, इसी से पिया जाता था पहले पानी। आप देखा है कोई फोटो में, देखा है कोई उनके पास कटोरी वटोरी है क्या, गिलास विलास कुछ नहीं है, ऐसे ही वो पिला रही थी, ऐसे पी रहे थे, तो अभी पी ही रहे थे और पी रहे थे का मतलब अब अमृत मानो के जबान से नीचे गले तक मुश्किल से गया था। उस समय जहार सर, सर को काट दिया, पीते हुए को, पीते हुए के सर को काट दिया, पी लिया था उसके बाद नहीं, पीते हुए के सर को काट लिया। और तीसरी लाइन में क्या, तो जहार का अर्थ है काटना, पीबत का मतलब पीते हुए और सर का मतलब सर को। अब तीसरी लाइन कहता किसने काटा, हरीश, हरि ने काटा। इस हरि को लेकर केवल एक ही आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं मोहिनी मूर्ति मुस्कुराती हुई सुंदर नारी बन के आई थी, चक्कर नहीं उठाएगी, ये काम भगवान मन्वंतर के अवतार अजीत ने किया, ये समुद्र मंथन कौन से मन्वंतर में हुआ, तब भगवान का अवतार कौन था, अजीत, इस अजीत अवतार ने ही प्रेरणा दी थी समुद्र मंथन की। ये संभवतः चौथा या पांचवा मनवंतर है, चौथा, चौथा है। गजेंद्र मंथन कौन से में हुआ, गजेंद्र मंथन मेरे ख्याल में चौथे में, ये पांचवा, ऐसे ये चौथा है। अजित अवतार ने अपना चक्कर चलाया, लिखा है हरि ने चलाया। हरि का क्या अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हैं, महाप्रभु ने दो अर्थ विशेष रूप से हरि के स्वीकार किए हैं। पहला है भक्तों के दुख हरना, तो यहां भक्तों के ऊपर क्या संकट था, देवताओं के हिस्से का अमृत पान कर रहा था, इसलिए हरि ने उसका प्राण हर लिया। और दूसरा हरि का क्या अर्थ है, मुख्य, प्रेम देई मन हरे। एक हरि का दूसरा अर्थ है भगवान इतना अपने भक्तों को प्रेम देता है कि उनका मन हर लेता है। आप में से किसी का मन हरा भगवान ने, किसका भगवान ने मन हरा, किसने अपना मन, भगवान कहा कि हमारा मन भगवान चोरी करके ले गए, किसने कहा, गोपियों ने। तो वास्तव में मन हरने वाला उदाहरण एकमात्र गोपियां हैं, जिनका मन कृष्ण ने हर लिया। कैसे हरा? वो उस शब्द में, भगवान के नाम में भी हरि शब्द है। कैसे हरा? मुरली मनोहर, मुरली बजाकर मन हरने वाला। तो मन भगवान कैसे हरता है भक्तों का? मुरली बजाकर। और असुरों का प्राण हर लेता है। तो हरि ने किया। तस्य का मतलब उसका, किसका? जो असुरों होते हुए देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी रहा था, उसका क्या किया? हरि तस्य, ये तस्य तक तो दो लाइनों के साथ मिलेगा। हरि ने उस राहु का पीते हुए गर्दन तेज चक्कर से काट लिया, तेज धार वाले चक्कर से काट लिया। ये तो हो गया सर की बात। अब क्या हुआ? कमंधस्तस्य, कमंध कहते हैं यहां कंधों से नीचे वाले शरीर को कहते हैं कमंध। कमंध नाम कहीं आपने पढ़ा है? रामायण में कमंध नाम का एक असुर है, वो सीता हरण के उपरांत राम और लक्ष्मण को मिलता है। उसका गर्दन नहीं है, उसके पेट में उसका मुंह है। उसका मुंह शाप के कारण पेट में चला गया था, सिर्फ कंधे दिख रहे थे। भुजाएं बहुत 12 कोस लंबी थी, और उसका काम था जो सामने आए दोनों हाथों से एक से पकड़ के पेट में डालता था, और मुंह दांत पेट में थे। उसका नाम था कबंध असुर, और उसने राम लक्ष्मण दोनों को पकड़ लिया था ऐसे। तो इस कबंध को ऐसे लिखने का भाव यह है कि ये कबंध मतलब राहु का नीचे का हिस्सा, नीचे का हिस्सा। ये क्या बन गया? इसको जीव गोस्वामी कहते हैं, अब शरीर तो बचा नहीं नीचे वाला, तो ये हो गया छाया ग्रह। ये छाया ग्रह, शरीर तो समाप्त हो गया, तो उसका छाया ग्रह, इसके नीचे के हिस्से को छाया ग्रह कहते हैं। तो ये केतु है, केतु जो है ये कबंध है इसी राहु का, जो छाया ग्रह के रूप में रह गया। सो एक से दो हो गए। तो कबंधस, कबंधस के बाद शब्द तू, तू का मतलब परंतु, तू का अर्थ होता है परंतु। कबंधस परंतु, कबंधस तू का मतलब है बिना सर वाला, लिखा है बिना सर वाला, प्रभुपाद के शब्दों में लिखा है सरहीन, बाकी शरीर, परंतु बिना सर वाला शेष शरीर। क्या हुआ उसका? पतत, गिर गया, गिर गया मैंने मर गया। क्यों मरा? शुद्धा अपला वितो, शुद्धा कहते हैं अमृत को, शुद्धा का अर्थ है अमृत। अपलावितो का मतलब अभी छुआ ही नहीं था उसको, अमृत ने स्पर्श भी नहीं किया था किसका? शेष शरीर का, इसलिए वो गिर गया। और सर नहीं गिरा क्योंकि उसने अमृत पिया था। तो जहां तक अमृत पहुंचा वो तो अमर हो गया, और जहां नहीं पहुंचा वो नीचे गिर गया। तो ये चार लाइनों का अर्थ अब स्पष्ट हो गया। अब श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि ने, ये हरि को प्रभुपाद ने आगे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लिखा है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हरि। छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्कर को चलाकर छुरे के समान तेज धार वाले, इसका मतलब जो क्षोर शब्द है इससे छुरा शब्द बना है हमारा, जो छुरी शब्द बना है ये क्षोर से बना हुआ है इससे लगता है, तो क्षोर से छुरी बना है, क्षोर छुरी छुरा, धार उसकी तेज है, तो तेज धार वाली छुरी के समान, तो एक क्षोर छुरी उससे बिगड़ के हमारी भाषा में हो गया छुरा या छुरी। चक्कर को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर काट दिया, तुरंत ही राहु का सर काट दिया का मतलब अमृत पीते हुए काट दिया, पीने के बाद नहीं। कुछ लोग कहते हैं पीबत सर जहार, कब काटा, जब पी रहा था। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो उसका शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। ये है शुद्धा अमृत, स्पर्श नहीं किया अपलावितो अपतत, जीवित नहीं पाया, गिर गया भाई, इसका शरीर गिर गया मतलब मर गया। तो ये है अनुवाद इसका। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य एक अमृत के आश्चर्यजनक प्रभाव क्या होता है उसके ऊपर लिखा है। चक्कर की महिमा प्रभुपाद ने उस भाव को नहीं लिया है इसमें, इसमें अमृत के प्रभाव को प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिया है। तो तात्पर्य की पहली लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, जब मोहिनी मूर्ति रूप श्री भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया, प्रभुपाद लिखते हैं मोहिनी रूप ने उनके शरीर को छिन्न किया। आपने मोहिनी मूर्ति का कहीं मंदिर देखा है, सुना है? आंध्र प्रदेश में है, देखा है आपने, देखा है सुना है? कहाँ है? पूरा मंदिर सिर्फ मोहिनी मूर्ति का या और कुछ भी है वहां? क्या बोल रहे हैं? याद नहीं है, कोई बात नहीं। बद्रीनाथ से एक बार हम यात्रा करके आ रहे थे, रात को श्रीनगर में रुक रहे, श्रीनगर बद्रीनाथ के रास्ते में बड़ा शहर है, तो हमको किसी ने कहा यह मोहिनी मूर्ति का मंदिर है। तो दूसरे दिन सुबह उठ के हम गए मोहिनी मूर्ति के मंदिर को देखने। श्रीनगर में आर्मी का बेस है, उस आर्मी के बेस के अंदर से कैंटोनमेंट से होके अंदर जाना पड़ता है, और मोहिनी मूर्ति का मंदिर है उसके शिखर को, जब बाढ़ आई थी गंगा में तो शिखर के ऊपर वाला जो कलश का टुकड़ा है पत्थर का वो गिरा हुआ है अभी भी, और अंदर मोहिनी मूर्ति अकेली का यहां मंदिर श्रीनगर में है। कभी बद्रीनाथ आते जाते, वैसे हमने कई बार सोचा है कि जब बीच में देखते जाते हैं, लेकिन उस वक्त न आते रुकते हैं न जाते रुकते हैं, जाते भागते जाते हैं, दर्शन करते हैं, आते जल्दी इसलिए रुकता बहुत कम लोग रुकते हैं। लेकिन मोहिनी मूर्ति का कभी दर्शन करना हो मंदिर के अंदर भगवान के रूप में, तो श्रीनगर में ये मोहिनी मूर्ति के नाम का मंदिर है। और एक दिन हम यात्रा में उसी मंदिर का दर्शन उस वक्त कर रहे थे, और एक हमारा सदा यात्रा में जाने वाला भक्त था, वो उस दिन अजीत, वो उस दिन हमारे साथ नहीं था। नहीं क्यों आया था कि उसके घर में प्रसव होने वाला था, बालक के आने का था, तो हम उधर थे, तो उसका फोन आया कि अभी हमारे घर में बालकी का जन्म हुआ है। तो हम सब खड़े थे, हमने बोला तो फिर उसका नाम मोहिनी मूर्ति रख दो, क्योंकि उसी वक्त जन्म हुआ है जब हम मोहिनी मूर्ति के मंदिर का सब दर्शन कर रहे थे। तो उस दिन उस बालकी का नाम मैं समझता हूं मोहिनी मूर्ति ही रखा, उसी दिन ये घटना ऐसे हुई थी। कोई उस वक्त आप में से था उस यात्रा में? आप थी डॉक्टर साहब? नहीं, उसमें नहीं थे आप, कोई बात। तो ये उस यात्रा में हमने मोहिनी मूर्ति का ये मंदिर देखा। सो मोहिनी मूर्ति ने प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका सर गर्दन से काट दिया। अब चक्रवर्ती पाद कहते हैं अजीत जी ने काटा। अब दोनों को कैसे आपस में मिलाएंगे मैं समझता नहीं हूं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं कि दोनों ही भगवान हैं और भगवान के अवतार हैं, दोनों के हाथ में चक्र है तो कोई भी काट सकता है। विश्वनाथ एक लाइन का तात्पर्य लिखा है, लेकिन लिखा है कि मोहिनी मूर्ति ने नहीं, भगवान अजीत ने चक्कर से राहु का सर काटा। अब किस भाव से लिखा है, आचार्यों को अपना अनुभूति एक होती है तो उन्होंने उस भाव से उसको ऐसे लिखा है। किंतु शरीर मर गया, सर तो जीवित रहा, शरीर मर गया। प्रभुपाद लिखते हैं जहां तक अमृत पहुंचा था वो बच गया, जहां अमृत नहीं पहुंचा था वो हिस्सा मर गया। राहु अपने मुख से अमृत पी रहा था और इसके पूर्व के अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका शरीर काट दिया गया। तो वहां तक ही अमृत पहुंचा था, तो इसलिए प्रभुपाद जी एक लाइन में लिखते हैं इस तरह राहु का सर तो जीवित रहा किंतु उसका शरीर मृत हो गया। श्री भगवान द्वारा संपन्न ये अद्भुत कार्य ये दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। प्रभुपाद जी ने लिखा क्या, भगवान क्या दिखाना चाहते थे इससे, कि अमृत अद्भुत है और देव आहार है। इसका मतलब केवल देवता ही उसका भोग कर सकते हैं, वो असुरों के लिए नहीं है। तीन श्लोकों के बाद आएगा आगे, देवता और असुर दोनों समय वही था, एक ही काल था, एक ही जगह थी, एक ही स्थान था, देश वही, काल वही, और क्रिया भी दोनों ने वही की, काम भी दोनों ने वही किया, लेकिन देवताओं को अमृत मिला और असुरों को कुछ नहीं मिला। और उसके लिए कारण लिखा है वह, क्योंकि देवता भगवान के शरणागत थे और असुर भगवान के द्वेषी थे, इसलिए उनको अमृत नहीं मिला। तो देवताओं का आहार है अमृत। अब एक दूसरा इसको देख के एक और दूसरे उदाहरण को देखिए। शंकर जी ने परोपकार के लिए विष पिया, उस विष को भी गले से नीचे नहीं जाने दिया, गले में ही रख दिया। मुख में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जीभा सर्वत्र सदा के लिए राम नाम जपती है, इसलिए जीभा के ऊपर रख नहीं सकते अमृत को, वो सारी विष को। भाई जीभा जीवान के ऊपर विष कैसे रखेंगे, जिसके ऊपर भगवान के नाम का अमृत सदा ही ऊपर, कुछ करे भी कि नहीं, वह विष कुछ कर नहीं सकता है, रखा कहां रखेंगे, अमृत है वह, हर समय नाम सुमरण चलता रहता है। और नीचे क्यों नहीं जाने दिया, बोला हृदय में भगवान विराजमान है, वहां अमृत कैसे डालूं, तो शंकर जी ने कंठ में ही रख दिया, तो वो उनका आभूषण हो गया संत, वो निशान नीला हो गया, तो नीलकंठ नाम हो गया शंकर का, और शंकर देवताओं में महादेव हो गए। विष पी कर भी महादेव हुए क्योंकि परोपकार के लिए पिया, और अमृत पीने के बाद भी राहु क्रूर ग्रह रहा। अमृत पिया फिर भी देवता भी नहीं बना, क्रूर ग्रह रह गया। क्यों? छल करके पी रहा था। तो परोपकार के लिए कष्ट उठाना भी महान है और छल करके अमृत पीना भी हानिकार है। ये दूसरा सिद्धांत स्थापित होता है। अमृत देवताओं का आहार है। प्रभुपाद जी ये बात लिखते हैं, देवताओं का आहार है अमृत। इसलिए स्वर्ग में लोग जाते हैं तो उनको वहां सुधा पिलाई जाती है, वहां सुधा है, अमृत है, इसलिए लोग उधर जाते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि देवता अमृत पीते हैं। क्या ये अमृत सदा के लिए अमर करने वाला है? क्या नहीं, देवलोक का अमृत है। इसी अमृत का कलश भर के इंद्र जी, देवराज इंद्र सुखदेव गोस्वामी के पास आए, कहा परीक्षित को ये पिला दो, सांप के काटने से मरेगा नहीं, हम तो असुर अमृत लाए हैं देवलोक से। सुखदेव ने कहा ठीक है लाओ। बोला इसके बदले में हमको भागवत का अमृत पिला दो। सुखदेव ने कहा उठाओ कलश, तुम्हारे स्वर्ग के अमृत की तुलना तुम भागवत के अमृत से करते हो, इसका अर्थ है तुम कुछ मोल दे के भागवत को सुनना चाहते हो, अमृत की कीमत चुकाकर तुम भागवत को सुनने के अधिकारी नहीं हो, लायक नहीं हो, उठाओ अपना कलश और चलो। और परीक्षा देख रहा था और परीक्षा की परीक्षा भी हो गई सुखदेव के द्वारा कि वो ये नहीं कहा गुरुदेव पिला दो मुझे अमृत में बच जाऊंगा। बोलो नहीं नहीं भागवत का अमृत अच्छा है, ये नहीं चाहिए मुझे अमृत। तो ये बहुत बड़ी बात है, समझना चाहिए कि जो ये अमृत अभी आज आप भागवत का पी रहे हो, ये स्वर्ग से के अमृत से महान है। ये तो धर्मामृतम यथोक्तम, ये 15वें अध्याय भगवद गीता का श्लोक है, नहीं 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। 12वें अध्याय का नाम क्या है? और उसको भगवान कहते हैं धर्म। ये तो धर्मामृतम यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। जो भक्ति रूपी अमृत का पान करता है वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो ये अमृत जो है, भक्ति वाले अमृत पीने से क्या लाभ होता है? नमे भक्त प्रणश्यति, फिर भक्त का कभी पतन नहीं होता है। और स्वर्ग वाले अमृत का क्या है? तेतं भोक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, वो तो वापस आ जाएंगे, वो वहां सदा नहीं रह सकते, वो अमर नहीं है। नाम अमृत है लेकिन तो दोनों के अमृत का अंतर लगा। ये जो बड़े कुंभ मेले लगते हैं चार जगहों पे और आने वाले 24 में लगेगा अपने 25 के जनवरी में प्रयागराज में, वहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। ये जब कलश ले जाया जा रहा था, ये जो यहां काली देह के ऊपर जो वृक्ष है जिसके ऊपर से भगवान कूदे थे काली देह में, कदम का वृक्ष है, इसके ऊपर जयंत इंद्र का बेटा कलश का अमृत का कलश लेके बैठा था, तो ये वृक्ष अमर हो गया, ऐसे कहते हैं। इसके ऊपर अमृत का कलश लेके इंद्र का बेटा जयंत बैठा था। अमृत के कलश की चोरी भी की थी कद्रु के पुत्रों ने, वो सांपों की माता के लिए, तो वो भी अमृत की एक कथा है। उसी झीछीना झपटी में कुछ बूंदे अमृत की गिरी, और विशेष जब ग्रह नक्षत्र होते हैं तो ये चार जगहों में अमृत प्रकट होता है, और इसको कुंभ मेला कहते हैं, और लोग उस अमृत का पान करने जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कुंभ मेले दो में गए, प्रयागराज के दो कुंभ मेलों में प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से गए। उन्होंने इस अमृत स्नान करके अमृत पाने से ज्यादा महत्व दिया कुंभ मेले क्षेत्र में हरि नाम अमृत का वितरण करो, ये अमृत नित्य शाश्वत है। और वास्तव में बाकी सब कुंभ मेला अपनी जगह में महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रयागराज का भक्ति रस अमृत सिंधु चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन तक प्रयाग के किनारे 10 अश्वमेध घाट पे ये अमृत दिया है, भक्ति रस अमृत सिंधु। और नदी में क्या गिरा है? अमृत बिंदु, एक अमृत का बिंदु गिरा है, एक ड्रॉप गिरा है। और वहीं किनारे के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन भक्ति रसामृत सिंधु सागर दिया है। तो हमारे लिए भक्ति के अमृत का सागर, और भक्ति में मुख्य रूप से सब साधनों में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है कीर्तन, और कीर्तन में भी सर्वश्रेष्ठ नाम कीर्तन, ये है सिद्धांत। और इसलिए प्रभुपाद जी कुंभ मेले में प्रतिदिन चाहते थे कि हरि नाम संकीर्तन मेले के क्षेत्र में हो, ये बड़े से बड़ा नाम अमृत का वितरण है। और वो परंपरा अभी तक भी सब कुंभ मेलाओं में पहले उत्साह के साथ 2-2, 4-4 सौ भक्त कीर्तन के साथ जाते थे, अब आस्ते आस्ते मेले के टेंटों से जाके भक्तों को निकालना पड़ता है कि जाओ कीर्तन के लिए, उत्साह से जाते नहीं। इसलिए आने वाले कुंभ मेले में जो जाए उधर, और विशेष रूप से तो 10-25, 20-25, 30 भक्तों के रहने का व्यवस्था सिर्फ कीर्तन के लिए करते हैं, कि वो उनका काम ही रोज कीर्तन पे जाना है, ये हमारा मुख्य कार्य है। तो उधर इस अमृत को बांटने का प्रयास करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। और कोई अमृत से जुड़ी हुई कथा या कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा? भगवान अमृत का अद्भुत प्रभाव दिखाना चाहते थे क्योंकि ये देवताओं का आहार है। अच्छा, और कोई देवताओं का विशेष आहार आपको याद है? अमृत खा, एक तो अमृत पीते हैं देवता, और सोमरस इसी का भाई है, और कोई कह रहा है घी खाते हैं, कहां लिखा है? उर्वशी जब आई थी स्वर्ग से, वास्तव में उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, मालूम है कहां से उर्वशी की उत्पत्ति हुई? भगवान नर नारायण ने अपनी जंगा से उत्पन्न करके और किसको उपहार दिया? कामदेव को, और कहा कि इंद्र को जाके ये दे दो हमारी तरफ से उपहार। तो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा नहीं है, भगवान नारायण के स्वयं अंग से उत्पन्न है। तो इस अप्सरा का मुख्य उद्देश्य था भविष्य में यदुवंश में कृष्ण के अवतार की सेवा करना। तो उर्वशी एक बार पुरुरवा महाराज स्वर्ग में चला गया था, सब देवताओं को प्रणाम किया, कामदेव को प्रणाम नहीं किया। कामदेव ने कहा ठीक है फिर हम तुम्हारे से प्रतिशोध लेंगे, और कामदेव ने इस पुरुरवा को और उर्वशी को किसी कारण से धरती पे आने का श्राप मिला, और नारद ने कहा पुरुरवा से विवाह करो, और पुरुरवा के पास आई तो उसने शर्त रखे, उसमें एक शर्त था मैं मात्र घी खाऊंगी। इसका मतलब अमृत के समान भाई गाय से जो जो पांच चीजें प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं पंचामृत, गाय से हर एक चीज प्राप्त होने को अमृत कहते हैं, तो गाय का घी भी अमृत है। और देवता लोग ये अमृत पीते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? अगर देवता बनना है तो घी खाओ, बात सब जगह। जब इस्कान के आरंभिक दिन थे तो प्रसाद केवल घी में बनता था, मक्खन में और घी में बनता था। भक्तों के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, गरीब थे, और प्रसाद बहुत रिच था भगवान के लिए। घी से भगवान को भोग लगेगा, देवता ही घी खाना चाहते हैं तो भगवान के धाम में तो सुरभि गाय है, उधर तो घी की नदियां बहती हैं। जहां कृष्ण का जन्म हुआ यहां जन्मा जो जो नंद उत्सव के अंदर इतना मक्खन एक दूसरे के ऊपर मारा गया, इतना दही दूध फेंका गया कि लोग फिसल फिसल के गिर रहे थे, और दूध की धारा जमुना में गई और ये जमुना नीली है प्रयागराज तक सफेद हो गई, इतना दूध बहा था यहां से। तो ये तो वृद्ध दो के अंदर तो दूध दही मक्खन घी इसकी नदियां बहनी चाहिए, अब तो सूंघने को भी घी नहीं मिलता है, खाना तो दूर रहा सूंघने को भी मिल नहीं रहा है, ये समस्या है बहुत बड़ी। एक मंदिर मैं जानता हूं, पता नहीं अभी वह वहां है कि नहीं, आज से दो चार साल पांच साल पहले प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ज्योतिषी हैं, उसने कहा देखो भगवान को भोग लगाना है, वो मंदिर इतना है कि जो भगवान को भोग लगता है वही भक्त प्रसाद खाते हैं, वहां किचन एक ही है दो अलग नहीं। उसने कहा भगवान का भोग तो आप केवल घी से बना के ही भगवान को अर्पण कर सकते हो, तो हो सकता है उन्होंने कहा कि घी महंगा है, बोले जो कुछ मिल रहा है मंदिर में ये किसके लिए मिल रहा है, बोले भगवान के लिए, बोला उसके लिए कौन सी चीज महंगी है। उसने कहा मैं घी का महीने का जितना खर्च आएगा मुझसे लो, प्रसाद सारा घी में बना के भगवान को भोग लगाया कर। एक मंत्र को मैं जानता हूं, और एक बार कुंभ मेले में हमने सेवा कर रहे थे, हमने कहा प्रसाद सबका सिर्फ घी में बनाओ और कुछ नहीं चलेगा, तो कुछ लोग थे पकाने वाले जो तेल लाए मस्टर्ड वाला, उनको अच्छा लगता है कुछ लोगों को खाने के लिए, प्रसाद सिर्फ घी से बनेगा। और उस साल कुंभ मेले में हमने कोई 30-40 लाख रुपया बचाए, खर्च करने के बाद उतने पैसे बचे थे, उस मुझे याद है अकाउंट में लिखे पड़े होंगे। इसका मतलब आप भगवान वो प्रसाद, और फिर तो सब कहते चलो बाबा घी का हलवा मिल रहा है, लोगों की लाइन लगती थी खाने के लिए। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अमृत पीने वाले जो है देवता, वास्तव में ये अमृत गाय वाला अमृत मुख्य अमृत है, लेकिन अब तो डॉक्टर ही खाने नहीं देते, हम क्या करेंगे? डॉक्टरों को पता नहीं है, मिलता नहीं है खाने को, तो सबको अपने जैसा कर दिया। हरे कृष्णा, पीछे प्रसाद का आगमन हो गया है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, विदाई गौर प्रेमानंदे।